जय राधमाधव कुंज बिहारे,
यह प्रवचन श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा गीता जयंती महामहोत्सव के उत्सव पर 25 दिसंबर 2015 को इस्कॉन गुरुग्राम में दिया गया।
गोपी जन बाला भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
गीता जयंती मनाई थी, हम सोच रहे थे भगवद गीता के विषय में चर्चा करें। वैसे तो आज क्रिसमस है और आज ये क्रिसमस का क्या मतलब, जीसस क्राइस्ट का जन्म, जीसस क्राइस्ट ने स्वयं कहा था कि हम सदा काल गीता का जो संदेश है या सबसे प्राचीन संदेश है, और गीता जयंती बनाते हैं क्योंकि 5,000 साल पूर्व परम भगवान ने ये उपदेश दिया था किसे, क्योंकि सनातन साथी अर्जुन है। ये बड़ी अच्छी बात है, कुछ दिन पहले हम लोग हरियाणा में थे और पिछले शनिवार और लड़का जब हरियाणा में आप बिहार हरियाणा के मुख्यमंत्री आए थे, तो कह रहे थे कि ये साल हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में 3 दिन का उत्सव किया है गीता के
संबंध
में, और कहा कि अगले साल हम एक अंतरराष्ट्रीय उत्सव करेंगे कुरुक्षेत्र में, ये सब कैसे हो
सके।
कहा कि अगले साल हमें विशुद्ध भक्तों को माना है और कुरुक्षेत्र पवित्र भूमि है जहाँ की भगवान ने उपदेश दिया था अर्जुन को। रावण जी गए थे कुरुक्षेत्र में December 75 में, उन दिनों में नंदा जी कुरुक्षेत्र ग्रहण के इंचार्ज थे, तो प्रभा जी को मिलने आए थे। उस समय स्वामी का एक छोटा मंदिर था बंगाली मार्केट में, जाते बंगाली चाट खाने जाते और चाट खाने में मिठाई में आते थे। जोड़े को देर में छोटा सा मंदिर था 3 कमरे का, जिसमें राधा पाठ शांति विग्रह थे। तो नंदा जी ने कहा प्रभा जी से, आप सारे विश्व में मंदिर बना रहे हो, कुरुक्षेत्र में क्यों नहीं बना रहे? तो प्रभा जी ने मंदिर दिया था, परम प्रभा जी था गए थे कुरुक्षेत्र। प्रभा जी ने पूरे शहर का भ्रमण किया, फिर शाम को निकलते समय जोधे सर में रुके, यहाँ की भगवान ने यह माना जाता है उस पेड़ के नीचे भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। जब हनुमान पहुंचे तो प्रभा जी ने कहा कि इस स्थान में ઈશ્વરને મંત્ર બનાવે છે. બધે પરિશ્રમ કે પશ્ચાત જે જ્ઞાન કે ત્યાં
હોય
આગે પર સમય કે સાથ એ જ્ઞાન ખો ગયા હતા. મેં ફિર સે દેના હું તમે ક્યું 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 સમજ મિત્ર મેરે પ્રિય મિત્ર હો ઓર ભક્ત હો એસલીએ તમે જ્ઞાન કે દેવ્ય રહસ્ય કો માધ્યમ સે પ્રાપ્ત ભાષા મે હવે અધિકાર હૈ ગીતા કા અનુવાદ કરને કે જૈસે કી જબ સે યે ગીતા યંત્રો પ્રકાશિત હુઈ હૈ આપ વિચારને ખુશી હોગી કે ગીતા યંત્રો કા અનુવાદ બ્રાહ્મણ ને અંગ્રેજી ભાષા રખ્યા હતા પર આગે અનુવાદ 70 સે અધિક ભાષા મે હો ગયા
હૈ. અયા
આજ વિશ્વ કી શહેરી કોઈ પ્રસિદ્ધ ભાષા હૈ જેને આપણે વરુ ગીતા યંત્રો પ્રાપ્ત કરો ઓર સારે વિશ્વ મે જો ગીતા પઢને હે ક્યું ગીતા મે હર પ્રશ્ન કા ઉત્તર હૈ હર સમસ્ય કા હલ હૈ. ઇસે હમે ધ્યાન સે ગીતા કા સંદેશ સમજ જાય. જબ ભગવાન ને અર્જુન સે કહા કે મેને ક્યા દિયા થા સૂર્ય કે દેવતા કો તો અર્જુન ને પૂછે એક પ્રશ્ન. અર્જુન કે મન મે કોઈ શક નહી થા પર મે બહુ સહજ હૈ પર એ ચિંતા થી કે ભવિષ્ય મે લોગ એની પૂછે કે અગર વ્યવસ્થા ત્યારે પ્રગટ હોય છે બ્રહ્માને કેસે ઉપદેશ દીધો છે. બ્રહ્માને ક્યાં કહા બહુત કાળ તમને મેં જન્મ ગયા મેં સબ જન્મ કે સ્મરણ કર સકતા હું ઓર સમજ. ગીતા કા ઉપદેશ દેખા જાય હમ સબ કે લિયે હૈ, હમ સબ કે ઉદ્ધાર કે લિયે હૈ, हम सबके सुधार के लिए है. अगर हम गीता के संदेश को समझे तो हमारे हृदय स्वच्छ हो जाएगा. आज अगर हमारे प्रधानमंत्री की योजना है स्वच्छ भारत है ना, और हमारे बोल रहे हम खुश है कि स्वच्छ भारत का प्रयास करने और हमारे लोगों के नाम है स्वच्छ हृदय. हृदय को स्वच्छ बना रहे, हृदय को स्वच्छ बनाएंगे तो पूरा वातावरण स्वच्छ होगा. हृदय में मैल होगी पूरे वातावरण में मैल होगी. देखने के साथ देखेगा और फाइव स्टार होटल में जाओ ऐसे लगते हैं तो स्वर्ग में आ गए हो और सब कुछ साथ ले. तो हर आज आवश्यकता है हृदय को ये संभव है अगर हम गीता का अध्ययन करें. गीता में अनेक महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा है. सबसे पहले तो गीता में यह साबित किया जाता है कि पर भगवान कौन है. आपने देखा होगा गीता में हर श्लोक में लगभग श्री भगवान वाचा, श्री भगवान वाचा का अर्थ क्या है, हर भगवान बोल रहे हैं. अर्जुन ने कहा आपको पर भगवान ये केवल मेरा निर्णय नहीं, इसी में देवला व्यास बना था इन सब का निर्णय है क्या, ये कहा वो पर भगवान ईश्वर परम कृष्ण सचिद विग्रह राधे राधे गोविंद ब्रह्मा जी ने हमें ब्रह्मा संहिता दी है, जिसमें हर श्लोक के बाद कौन भगवान के नहीं गुरु का संविधान किया था। ब्रह्मा जी कहते हैं अनेक ईश्वर है, एक ही परमेश्वर है जो ज्ञान का सार है। ये ज्ञान जो हम गीता में प्राप्त करते हैं, ये ज्ञान को साधारण व्यक्ति द्वारा नहीं परम भगवान द्वारा ज्ञान है। इसलिए इस ज्ञान को सनातन धर्म भी कहा जाता है। कोई ये नहीं कह सकता कभी ज्ञान नहीं हुआ था। तो गीता में ये साबित है कि परम भगवान क्या है, उनका परिचय क्या है, नाम क्या है, ठिकाना क्या है। आगे गीता में दूसरे अध्याय में आत्मा के विषय में पूर्ण ज्ञान होता है। आज हम सब अज्ञानता में पड़े हैं, अज्ञानता में जन्म लेते हैं, अज्ञानता में पढ़ते हैं। तो अक्सर 99% अज्ञानता में जो भाग्यवान व्यक्ति है उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्मानंद स्वामी ने बोले भगवान जी गुरु कृष्ण की कृपा है भक्ति का भी अनेक सूर्य में गुजरने के पश्चात वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसके हृदय में भक्ति का बीज भक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। भक्ति का ज्ञान भक्ति की महिमा ये ज्ञान हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। ये जीवन जो अध्ययन भाग्यशाली व्यक्ति है उन्हें प्राप्त हो रहा है। एक समय प्रभा जी श्री ने एक लेक्चर दे रहे थे हॉल में और लेक्चर के पश्चात एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा इफ यू आर मिस्टर कार्लसन इज सो परफेक्ट व्हाई इज द हॉल फुली पैक्ड। प्रभा जी ने उत्तर में कहा जब आप असली सोना बेच रहे हो तो ज्यादा ग्राहक नकली सोना बेच रहे हो ग्राहक। तो भावना जानवर जनों के पश्चात वो भाग्यशाली व्यक्ति है जो ये जानता है क्या हर चीज का। तो गीता के गुरु से अध्याय है भगवान उपदेश दे रहे हैं आत्मा के विषय में। आज के आधुनिक युग में आत्मा में ज्यादा विश्वास नहीं रहते। कई साल पहले 1968 में एक बहुत बड़े डॉक्टर थे केरल में टोरंटो में, जिन्होंने एक इंटरव्यू दिया था मोनिटर कैलर को। उसको उन्होंने कहा उन्होंने कहा था इंटरव्यू में कि मैं 32 साल से लोगों को पढ़ते देख रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि शरीर में कोई ऐसी चीज है तो वो छोड़ के जाती है तो क्या दिन मृत्यु हो गई। पर आप खोजेंगे क्या है वो चीज साइंटिस्टों के साथ कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि आप इतना स्वीकार कर रहे हो कि श्री में कुछ है और जो वो चीज त्यागनी है तो प्रभु जी ने आगे गीता के अनेक श्लोकों द्वारा ये साबित किया कि ये जो चीज है इसको कभी देख नहीं सकोगे वो है आत्मा। अंत में उसने स्वीकार किया ये ज्ञान वेदों में है वो भक्तिवादी विज्ञानी भी नहीं इसका मुकाबला कर सकते। तो आत्मा के कारण चेतना रहती है। आत्मा कई बार लोग कहते हैं स्वामी जी आत्मा का क्या प्रभाव है, हम विश्वास नहीं करते अगर हम किसी चीज को देख नहीं सकते। आत्मा का प्रभाव है क्या
चेतना।
जब तक आत्मा नहीं चेतना है, जब चेतना जो आत्मा नहीं है तो चेतना रहती है। और भगवान गीता में उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार हम अपने पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करते, इसी प्रकार आत्मा एक दिन को त्याग कर स्वीकार करते। कहा जाता है कर्मों के अनुसार, बाइबल में कहा होता है एज यू सो यू शैल रीप, जैसा प्रयास करोगे कार्य करोगे उसके अनुसार परिणाम होता पड़ेगा। तो गीता का ये आत्मा का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हमें ये ज्ञान प्राप्त हो जाए आत्मा सनातन है, केवल थोड़े समय के लिए हमारा साथ है, जब आप आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकोगे। एक पीसी आध्यात्मिक ज्ञान का है ये समझना कि आप ओम कौन, आपका असली स्वरूप क्या है। तो गीता के दूसरे अध्याय में ये शिक्षा दी जाती है, भगवान कहते हैं जाने बेटे वहां आत्मा कहना जन्म होता है ठाकुर एक महाराचार्य थे, उन्होंने कहा है ये दूसरा अध्याय गीता का सबसे महत्वपूर्ण है। जब इसे समझ आओगे तो क्या सावधानी से जीवन का उपयोग करोगे, ये गीता का एक और विषय। आगे गीता के द्वारा प्रकृति का ज्ञान मिलता है, प्रकृति जो है भगवान के निर्देश होती है, प्रकृति ये प्रकृति जो है मेरे इशारे से चलती है। प्रकृति साथ देगी तो आवश्यकताएं प्राप्त होगी, प्रकृति साथ नहीं देगी तो कैसे प्राप्त। आजकल क्या देखते हो आप, बहुत ही चढ़ जाए क्लाइमेटिक चेंजेस, अब देखते हो बाहर आता है सूखा होता है, नहीं परेशान है क्यों, पृथ्वी पर पाप का मूल्य जो है बढ़ते जा रहा है, तो पृथ्वी पर पाप का मूल्य बढ़ जाए तो प्रकृति हमको जन्म देती है। भगवत में आप पढ़ते हो एक ऐसा रणवीर की, रणवीर राजा थे असुरी भाव के, उनके मन में बड़ा घमंड था, सोचते थे मैं राजा हूं, मेरा प्रजा को सबको दे रहा हूं और सबको मेरी बात रखनी चाहिए। इस कारण उन्होंने सारी यज्ञ रखवा दिए, ब्राह्मणों के घरों को जला दिया, क्योंकि उसने हर प्रकार रुपा दिया था, प्रकृति जो है अनेक कष्ट दे रही थी, सारे सागर सूख गए, पेड़ों में कोई फल नहीं, पृथ्वी में कुछ अन्न नहीं थी, प्राप्त। हम सबको आर्थिक लाभ चाहिए, भगवान कहते हैं अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के कारण, वर्षा की प्राप्ति होती है जब आप यज्ञ करोगे, जब यज्ञ नहीं करोगे तो प्रकृति साथ नहीं देगी। ये क्या आवश्यक है, आज हम देखते सारे समाज में हर देश हर समाज हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है अधिक से अधिक मात्रा में क्या कमाने के लिए, क्योंकि ये माना जाता है धन साधन बनता है इज्जत करने का, पर आपको धन भी चाहिए तो भगवान क्या कहते हैं, मेरे ईश्वर में भगवान कहते हैं साधन न्याय में चार परिस्थिति में तो मेरे शरण में आते हैं। कौन है चार श्रेणी के व्यक्ति? एक जैसे धन चले, विसर्गों की पीड़ित, जिज्ञासु ज्ञानी। भगवान कहते हैं चार के चार श्रेणी के व्यक्ति पुण्यात्मा है क्योंकि कम से कम मेरे शरण में आ रहे हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? ज्ञान के आधार पर निष्काम भाव से मेरी सेवा में जुड़ता है। तो प्रकृति है, प्रकृति है भगवान के निर्देशन में। जब हम यज्ञ करेंगे तो प्रकृति साथ देगी। भगवान की तरह कहते हैं यज्ञ दान तपस्या, ये तीन कार्यों को कभी याद नहीं थे। तो ये है यज्ञ भगवान के नियमों का पालन करना। इस प्रकार अलग अलग बीमारी का अलग अलग इलाज है, उसी प्रकार अलग अलग युग में अलग अलग उपाय है। जैसे कि सभी में उपाय क्या था, भगवान का चिंतन करना। लोगों की अवधि 100,000 साल होती थी सभी में, चेती में 10,000 कम हो गई। साधन क्या था? बड़े बड़े यज्ञ जिसमें शुद्ध ब्राह्मण शुद्ध वस्तु का उपयोग किया जाता था। विराज वापी होगा अवधि और 10,000 कम हो गई। और यज्ञ के साधन क्या था? अर्चना, भगवान के चरणों में भेंट अर्पण करना। अगर आपको बोले दर्शन में आएगा दुर्गा के मंदिर में, थोड़ा सोना जरूर आना था। आप श्रद्धा सामने पड़ाओगे दर्शन, आपको वहां जाए चिंतन करोगे संभव है। अगर बोले तेरे के साधन का उपयोग करो, यज्ञ करो, शुद्ध गुरु की इत्यादि का उपयोग, आपको समय जी कुछ उधर खर्चा निकलता है, ये गलत इच्छा है। तो इस करने का भी उनका साधन है हमारे ग्रह उपचार। ये गीता का तीसरा विषय क्या? प्रकृति है। फिर आगे एक और विषय गीता का, वो है समय की चर्चा। भगवान कहते हैं टाइम डिस्ट्रॉय, भगवान कहते हैं समय के विषय में समय मेरा प्रतिनिधि है। समय जो है हर चीज को नष्ट कर देता है। सच्चू आज आपको शरीर जवान है, समय क्या करेगा? जवान रहेगा समय के साथ बुरा हो जाएगा। कंठ बड़ा मधुर है, समय क्या करेगा? समय के साथ कमजोर हो जाएगा। शरीर के शरीर में ताकत है, समय के साथ आगे कम हो जाती है। तो समय जो है भगवान का प्रतिनिधि है। और हमारे शास्त्र में कहा गया है कि हमें एक पल का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, समय का उपयोग करना चाहिए सदा किसके, भगवान की सेवा में। चले के पति ने कहा है एक पल का भी दुरुपयोग करोगे सारे विश्व के धन से वापस नहीं लाते। ये भगवान की तरह विषय गीता में भगवान कहते हैं सभी को उपयोग करो इसलिए। आगे भगवान कहते हैं कोई कार्य करो, वैसे कार्य करो जो कि शास्त्र पढ़ा जा रहे हो। भगवान ने हमें छूट दी है, जैसे गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन ने कहा यहाँ के शरण में थोड़ा हो, मुझे शिक्षा दीजिए क्या होना चाहिए जीवन का कर्तव्य। भगवान ने उपदेश दिया ठाकुर जी हमें पूछा ये अर्जुन थोड़ी अज्ञान से क्या दूर हो गए अर्जुन ने कहा था तो भगवान हमें उपदेश दे रहे हैं गीता में क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। कभी कभी लोग कहते हैं अब गीता पढ़ेंगे समाज में रुचि नष्ट हो जाएगी अब गीता से दूर रहना चाहते हैं। गीता पढ़ोगे तो असली ज्ञान प्राप्त होगा। गीता पढ़ोगे शोक चिंता तनाव से बच सकोगे। आज समाज में चिंता तनाव इत्यादि से प्रजा भरी रहेंगे। गीता पढ़ोगे आपका मन शांत रहेगा। जब किसी व्यक्ति का ध्यान होता है तो रिश्तेदार मित्र उदास हो जाते हैं। जब गीता का दूसरे अध्याय का उपदेश सुनते हैं फिर से ठीक समझ आता है। तो शोक से बचना है क्या आवश्यक है गीता का क्षेत्रीय क्षेत्र गीता में एक कथा पढ़ते हो जो क्षेत्रीय महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो एक मंदिर में पहुंचे जिसके नाम था श्री रंग तो वहां एक ब्राह्मण था जो बहुत ही तेजी से अनपढ़ था पर एक स्थान में बैठकर 18 अध्यायों का उच्चारण करता था और क्योंकि वो अनपढ़ था कई श्लोकों का उच्चारण नहीं करता था कई लोगों और पड़ोसी प्रजा जो गांव वाले थे वो जानते थे ये अनपढ़ है तो हंसते थे पंडित बन गया वो गीता पढ़ रहा है। जब भी गीता पढ़ता था तो साथ में श्री के माध्यम से शुद्ध भाषी के लक्षण प्रकट हो रहे थे निर्दोष से आंसू बह रहे थे इत्यादि। क्षेत्रीय महाप्रभु क्योंकि स्वयं भगवान थे उन्होंने विचार लिया ये ब्राह्मण के द्वारा शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट हो रहे हैं जब ये गीता को पढ़ता है तो महाप्रभु ने उनसे पूछा हे ब्राह्मण गीता में क्या है जिसके द्वारा तुम्हें शुद्ध भक्ति के लक्षण को प्रकट कर रहे हो। ब्राह्मण ने कहा मैं तो अनपढ़ हूं मुझे गीता के श्लोक समझ भी नहीं आते और मैं ठीक उच्चारण भी नहीं कर पाता क्योंकि मेरे गुरु ने आदेश दिया था रोज गीता पढ़ो इसी में रोज इस आदेश का पालन करो। जब मैं देखता हूं कि भला भगवान अर्जुन के पार्थ सारथी बनकर है उनके आदेश के अनुसार रथ चला रहे हैं जब मैं भगवान की विनम्रता देखता हूं ये आंसू बहते हैं। हमारे भगवान इतने प्रसन्न हुए उन्होंने ब्राह्मण को गले लगाया और कहा तो गीता के असली संदेश को
जानते
हो। चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण को अपने साथ 4 महीने के लिए रखा और गीता का गहरा अर्थ समझाया। तो इस कथा का सार क्या है? सार यह है कि ब्राह्मण नियमित रूप से गुरु के आदेश का पालन कर रहा था रोज गीता के 18 अध्यायों का अध्ययन और जिसका यह परिणाम हुआ कि परम भगवान क्षेत्रीय महाप्रभु स्वयं आए उन्हें दर्शन दिया। तो हम सबका ये प्रयास करना चाहिए कि क्या करें गीता को रोज करें। गीता जयंती के उपलक्ष्य आप जानते हम प्रचार करते हैं गीता को बांटने का प्रयास करते हैं तो हमारा एक निर्णय ये भी होना चाहिए कि हम गीता को रोज पढ़ेंगे। धर्म सभी प्रश्न करने आप पढ़ते हो जब भगवान प्रकट हो गए थे उनके सनातन साथी अर्जुन अधिक दुखी थे। अर्जुन ने उन घटनाओं का स्मरण आरंभ किया जो कि भौतिक दृष्टि से असंभव थी, उनके गणेश मित्र के सहयोग के कारण सफल था। वो उदास थे, भगवान प्रकट हो गए हैं, हम वन जीवों के लिए इसको समझना आसान नहीं है। जैसे आप पढ़ते हो गोपियों के लिए एक पल भी भगवान के दर्शन के बिना जीना संभव था। उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा और आगे क्यों लाइन उपलब्ध करती है तो अर्जुन को जब पता लगा कि भगवान लोग प्रकट हो गए हैं वो अत्यंत दुखी थे। उसमें अर्जुन ने गीता के श्लोकों का स्मरण आरंभ किया, जैसे गीता के श्लोक का स्मरण आरंभ किया अर्जुन लगा कि पर भगवान स्वयं यहां उपस्थित है। और अर्जुन का शोक उदासी था समाप्त हो गया और वो फिर से प्रसन्न हो गए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जैसे कि अर्जुन ने भगवान के उपदेश का स्मरण किया वैसे हमें ग्रंथ किया गीता के शोक का स्मरण। गीता द्वारा हमें शिक्षा मिलती है कि पर भगवान असली भोक्ता भोक्ता आप देखें तो वो सब सर्वलोक में ईश्वर सूर्य अगर आपको मन की शांति चाहिए असली सुख चाहिए तो ये स्वीकार करो कि पर भगवान असली भोक्ता आप और हम नहीं, और हर चीज का उपयोग होना चाहिए। गीता का निर्णय है भक्ति योग। भक्ति योग एक साधन है जिसके द्वारा पर भगवान को आकर्षित कर सकते हो। भक्ति भक्ति एक साधन है जिसके द्वारा भगवान को समझ सकते हो। भगवान को समझने के लिए ना तो भौतिक धन की आवश्यकता है, ना भौतिक तालीम की, ना कश्मीति की, किसी आवश्यकता है सेवकों की जीवन सेवा सेवा के माध्यम से भगवान को समझ सकते हो। तो गीता ने भगवान कहते हैं पात्रा पुष्पा पाला दोयम जो भी भक्त प्रेम और भक्ति के साथ एक तुलसी का पता भी मुझे अर्पण करोगे तो मैं स्वीकार करूंगा। ये है भगवान कह रहे हैं याद करो कि यदि जो तुम खाते जो भी कार्य करते हो जैसे हम सब जो है सभा में हैं सब कोई भी कार्य करते हैं आप क्या करते हो सब कोई भी कोई कार्य करे कोई विद्यार्थी है कोई व्यापारी है कोई नौकरी करता है कोई रसोई बनाता है कोई बच्चों को पाल रहा है जो भी कार्य कर रहे हो भगवान क्या कहते हैं मेरी खुशी करो। जो भी खाते हो पहले खुशी अर्पण करो, जो दान देते हो मुझे दान दो और इस प्रकार करोगे अपने जीवन को सब पहुंचा सकोगे। भगवान ने अर्जुन से ये नहीं कहा अर्जुन तुम युद्ध की वजह से निकल कर विश्राम करो, अर्जुन की इच्छा थी विश्राम करने के लिए। अर्जुन ऊंचे कोटि के संत थे, अर्जुन में इतना त्याग की भावना थी अर्जुन ने तो पांडव भाइयों ने कहा ठीक है आप सारा राज्य रखना चाहते हो तो रख लो, हमें केवल पांच गांव दे दो हमारे लिए, पांच भाइयों के। और दुर्योधन ने क्या कहा, पांच गांव और हमें सूर्य का स्थान भी देंगे। भगवान अर्जुन ने क्या कहा, हे अर्जुन मदन बुद्धि को मुझे अर्जुन करते रहे, तुम्हें जीवन में लड़ो, तुम जीवन में लड़ो का अर्थ है अपना कर्तव्य निभाओ। भारत ने उसने पर अरे हिंदू ये सो क्या है कर्म नहीं वाले कारण है, अब विचार करने जाओ तो सब कह रहे कभी हम हमारा कर्म कर रहे कर्म नहीं होने जा रहे हैं, तो गीता का संदेश हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए और भगवान के प्रतिनिधियों के सहयोग से इसे समझना चाहिए। आप कितने बार तो भगवद गीता को रोज पढ़ते हो, तो एक निर्णय हमें ये लेना चाहिए कि हम गीता को रोज पढ़ेंगे, एक श्लोक पढ़िए कम से कम तात्पर्य के साथ। तात्पर्य में है प्रावण मान सभी व्याख्या, कभी भगवान ही कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है, और भगवान की अठारह में क्या कहते हैं, सब भक्त में सबसे प्रिय कौन है, सब भक्त में सबसे प्रिय कौन है,
प्रचार करते
हैं, प्रचार करते हैं, यहाँ पे हुआ है ना, भगवान ये भी कहते हैं तो प्रचार करते हैं, जैसे कि जैसे वर्ष हम प्रयास कर रहे हैं गीता बात की तैयारी कर रहे हैं, हर साल हम योजना बनाते हैं चार साल चार लाख गीता, जैसे पिछले कई सालों से आपके राधा माता शांति मंदिर के भक्त श्यावर साल श्यावर गीता पाठ कर रहे हैं, और पंजाब विभाग में पिछले कई सालों से ढाई लाख गीता पाठ कर रहे हैं, तो हर साल भक्त प्रयास करते क्या छह साल बाद गीता पाठ क्यों गीता लोग पढ़ेंगे और जीवन को सुधारेंगे। हमारे आचार्यों ने प्रचार की सेवा में बहुत बल दिया है, प्रहलाद प्रणाल उदाहरण के लिए साजिश करने कहते हैं, हे भगवान मुझे जंगल जाने की इच्छा नहीं है, मैं वहां जाना चाहता हूँ पहाड़ों में नहीं, वहां जाना चाहता हूँ जब मैं लोगों को सुखी बनाता हूँ, वहां की शिक्षा देकर। और भगवद गीता में भगवत में भी अनेक श्लोक है यहाँ की भगवान प्रचार की सेवा की महिमा कर रहे हैं। कुछ इंद्र महाप्रभु जिंद्र महाप्रभु एक दिन सागर की कुटिया में गए, अजय सागर मुसलमान खानदान में जी का अवतार है, तो चेंद्र महाप्रभु गए उनके पास कहने लगे, हरिदास ये बताओ कैसे वृक्षों का और ब्राह्मणों को वृक्षों पर यावलों का उद्धार होगा, नक्ष यावल से कहते हैं कृष्णानंद बोलो कृष्ण भाजपा कृष्ण कृष्ण की उपासना करो और बोलो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण की शिक्षा को अपनाओ। शिक्षा जो कि गीता इत्यादि ग्रंथ में है, तो क्षेत्र महात्मा के आदेश के अनुसार घर घर जाकर प्रचार का आरंभ किया। वो उन्हें पता था जितने मनोरम से भगवान है, कई घरों में वो गए, लोगों ने उनका बड़े उत्साह से स्वागत किया, कहा कि स्वामी जी आ गए हमारे घर में, घर को पवित्र बनाने के लिए, बताइए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। और नित्यानंद कह रहे थे कृष्ण का नाम लो, कृष्ण तुम्हारा माता है, पिता है, प्राण है, असली धन। और लोग कह रहे थे आओ प्रशांत आओ हमारे घर में, हम कुछ नहीं खाएंगे, केवल घी निवेदन है या कृष्ण का नाम लो, वो तुम्हारे माता है पिता है। और वो कहते थे आराम लेंगे। कई घर में वो जाते थे, लोग कहते थे भाई तो पागल हो गया है, दूसरों को भी पागल बना रहा है, पिता जी ने भेजा हमें पागल बना रहे, उनकी उनकी निंदा करके भगा देते थे। कई कहते थे लगता है लगता है ये चोर की प्रतिनिधि है, आ रहे हमारे घर में देखने के लिए क्या है, फिर आगे रात को चुरा देंगे। मैं किसी का जाता था प्रचार करते हैं कई सारे आपका स्वागत किया जाता है, कई सारे में आपकी बेइज्जती की जाती है, तो कई सारे में लोग आपको आरोप भी लगाते हैं और फिर काम धंधा नहीं है, हर सवाल जाते जब इस प्रकार का व्यवहार हो तो आपको स्मरण करना चाहिए आपको तो गीता के संदेश की आवश्यकता है। घर घर जाकर हमारे भक्त गीता पढ़ते हैं, आपको शायद पता होगा कि ईसाई लोग क्रिश्चियन लोग सारे इंडिया में आकर घर घर जाकर भाई लोग पढ़ रहे हैं और कईयों का उदाहरण हुआ है। अगर आज आप देख रहे हो कि भक्त की संख्या बढ़ रही है, मूल कारण क्या है, एक श्रद्धों का अभाव, श्रद्धों का अध्ययन। तो आज अगर समाज में किसी चीज की कमी है तो इस दिव्य ज्ञान की कमी है। तो अंतराष्ट्र श्री कृष्ण महाराज संघ के द्वारा जिन्हें भी ज्ञान दिया जा रहा है समाज के सुधार के लिए, स्वामी ने बड़े प्रयास के साथ इन ग्रंथों को प्रकाशित किया। आप जानते हैं कि ऐसा नाम इस बार की गोल्डन जुबली बना रहे हैं और आज से 50 साल पूर्व प्रभुपाद गए ठाकरा से गाता भगवान जी के गुरु बना देना दे सिया था, तो पढ़े लिखे युवक हो ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देश में। और लगभग 40 सालों से अधिक भगवान जी को संघर्ष करना पड़ा और अत्यंत संघर्ष के पश्चात मुझे सुविधा प्राप्त हुई अमेरिका जाने के। तो अगस्त 13 1965 को दो हार्ट अटैक आए ब्रह्मा जी ने सोचा कि उनकी योजना सफल नहीं होगी, उन्हें भारत बहुत आदत है। अगले दिन सपना आया जिसमें भगवान ने कहा घबराओ मत, तुम्हारी योजना सफल होगी। और एक भगवान देवता के समीप नाव में थे, वो नाव ब्रह्मा जी के ध्यान में खींच रही थी। तो भगवान ने कहा घबराओ मत, तुम्हारी योजना सफल होगी। और जब ब्रह्मा वास्तव में पहुंचे सेप्टेम्बर 15, 1965 में, यहाँ का जो कैप्टन था पांडे, वो ब्रह्मा जी को ले गया शहर दिखाने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने शहर देखा तो ब्रह्मा जी ने सोचा कौन सुनेगा ये संदेश को, कि ब्रह्मा जी तो असली संदेश सुने रहे थे। उनमें ये भावना नहीं थी कि हम लोगों को आकर्षित करें धन कमाने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये यहाँ इतने इंडियन पृथ्वी पर बात है, कौन सुनेगा संदेश को। फिर ब्रह्मा जी ने कहा इतना रानी जी की असीम कृपा से हर कार्य संभव है। तो ब्रह्मा जी ने हमें शुद्ध संदेश दिया है और इस शुद्ध संदेश का हमें अध्ययन करना चाहिए और आगे विचारने में सीधे होते रहते। ब्रह्मा जी ने निरंतर मित्र की सेवा पर बल दिया। एक दिन ब्रह्मा जी गुरु महाराज के साथ राधापुर में थे, जब भक्ति सिद्धार्थ जी ने एक मृदंगा की तस्वीर बनाई और ब्रह्मा जी से कहा कि अगर भगवान तुम्हें सुविधा दे तो ग्रंथ को प्रकाशित करना और आपके दिल्ली में एक गुड़गांव दिल्ली में और दिल्ली में हरियाणा में और दिल्ली में आपके दिल्ली शहर में बाप जी खो जाते थे ग्रंथ को विष्णु ग्रंथ के लिए और हमारे आचार्य ने भी इससे वो प्रभाव होंगे। तो आप इसे कितने बार तो ये साल ग्रंथ के विष्णु की सेवा में जुड़े हुए हो सब नहीं, कई बातें जो नहीं जुड़े हुए उनसे निवेदन के जुड़िए और प्रयास कीजिए लोग गीता पढ़े। कई उदाहरण है किस प्रकार व्यक्ति आत्महत्या करने वाले थे, गीता पढ़कर उन्होंने ये भाव त्याग किया। तो अगर हमें विश्व में शांति चाहिए, अगर हमें मन में शांति चाहिए, अगर हमें असली सुख चाहिए, आज आप देखते हो चुनाव तनाव और चिंता से लोग भरे हुए, सच बात है, तनाव चिंता बढ़ते जा रही है करते जा रही है। और क्या है उपाय, गीता का उपदेश, गीता का हमें अध्ययन करना चाहिए, गीता हमें दूसरों को पहुंचाना चाहिए। हमारी एक योजना है हम जेलों में गीता पढ़ते हैं और हमारा ये अनुभव है जेल में जब लोग गीता पढ़ना शुरू करते हैं तो जेल से छूटते हैं, पहले मंदिर जाते हैं फिर अपने घर जाते हैं। तो गीता के द्वारा हमारा जीवन सफल हो सकता है पर हमें समय निकालना चाहिए गीता का अध्ययन करने के लिए। जब हम किसी विषय की आवश्यकता मानते हैं तो समय निकालने के लिए यात्रा देखते हो छोटे बच्चों को रुपये की शिक्षा देना आरंभ कर देते हैं। तो छोटी आयु से ही हमें गीता का अध्ययन आरंभ कर देते हैं। हर साल गीता दिन के उपलक्ष हमारे भक्त स्कूलों में गीता कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें हम बच्चों को गीता की भूमिका देते हैं पढ़ने के लिए, फिर एक परीक्षा देते हैं, फिर इनाम भी देते हैं। तो दक्षिण भारत में आंध्रा में शायद एक मुसलमान लड़के ने गीता कौंडल्य सीखा। जब गीता दे रहे थे तो उससे ही प्रभुवाकर भक्तर का वो शब्द सुना ले। तो उस लड़के ने कहा, मैं देखता हूँ कि जब मुसलमान लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं कुरान साथ लेके जाते हैं, और मैं देखता हूँ जब हमारे ईसाई भाई जाते हैं बाइबल साथ लेके जाते हैं, तो मैं देखता हूँ जब हिंदू लोग मंदिर जाते हैं उसके साथ लेके जाते हैं। तो बड़ा गीता पढ़िए, प्रेरणा दीजिए, एक गीता होनी चाहिए हर खाना में हर व्यक्ति के लिए। आप किसी घर में जाओ कितने सेलफोन होते हैं, एक अगर चार सदस्य हैं तो आठ सेलफोन होते हैं, कम से कम एक गीता होनी चाहिए हर व्यक्ति के। तो गीता पढ़िए और गीता को वाचिए।
बड़ी गहरी शक्ति है। श्रावण जी ने कहा कि कोई एक
श्लोक पढ़ ले तो अपने जीवन में सुधार सकेगा। इसलिए मैंने आप सबसे पहले ये निवेदन किया कि आप इस भजन के पक्ष ये निर्णय लीजिएगा अगर एक श्लोक रोज पढ़ोगे एक श्लोक रोज पढ़ोगे ज्ञान होगा उत्साह बढ़ेगा आपकी इच्छा होगी भगवान के आदेश है।
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।
Thank you for listening to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. For more information, please visit gkgoswami.com.